Om Shanti. Good morning, aap sabko bhi, and welcome back. Ek baar jo hai, ek vyakti ne apne dost se kaha ki ek baar jo hai, ek vyakti ne apne dost se kaha ki kya karu, mujhe na bahut gussa aata hai. Har choti choti baat par jo hai mujhe बहुत गुस्सा आता है. तो उसके दोस्त ने उसे कहा कि मेरे पास जो है ना गुस्से को कंट्रोल करने की एक फॉर्मूला है, एक इक्वेशन है. अगर तुम ये करना चालू कर दोगे तो तुम अपने गुस्से को काफी हद तक मैनेज कर पाओगे. तो उसने कहा मुझे बताओ कि कैसे कर सकती है. तो उसने अगर कहा देखो अगर जो है तुम्हें गुस्सा आता है और तुम्हारे सामने तुम्हारा कोई जूनियर है, कोई पर्सन जो है तुमसे छोटा है, जूनियर है, तो देन काउंट 10 एंड देन टॉक. अगर जो है वो एंगर आपको कोई अपने से इक्वल लेवल पर अगर आता है तो आप क्या करो, काउंट 30 एंड देन टॉक. अगर जो है आपको गुस्सा एंगर अपने से कोई सीनियर के ऊपर आता है तो क्या करो, काउंट 50 एंड देन टॉक. अगर आपको अगर गुस्सा अपनी वाइफ के ऊपर आता है तो क्या करना चाहिए, हाँ क्या करना चाहिए, तो कहा कि जो है कीप काउंटिंग, डोंट टॉक. और अगर जो है आपको अगर गुस्सा हस्बैंड के ऊपर आता है देन कीप टॉकिंग, डोंट काउंट. बराबर. अगर हम देखें आजकल ये कॉमन सी बात हो गई है, हर कोई कहता है मुझे जो है क्या है एंगर इश्यू है, हर छोटी छोटी बात पर मुझे गुस्सा आता है. तो आज यही सब्जेक्ट लेकर के हमारे बीच आदरणीय विनीता बहन बॉम्बे से आए हैं, जो हमें बताएंगी कि इस एंगर को हम कैसे अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से मैनेज. एंगर को क्या करना होता है, मैनेज करना होता है. तो इस एंगर को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो मैं सबसे पहले जो है बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आदरणीय विनीता बहन का फूलों से और बैच से स्वागत करें. आदरणीय विनीता बहन पिछले 32 इयर्स से इस ईश्वरीय ज्ञान के संपर्क में हैं. आप पिछले 26 वर्षों से समर्पित रूप से सांता क्रूज वेस्ट मुंबई में अपनी रहते हुए अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं. आप एक बहुत ही कुशल वक्ता है. आप जो है हमारी ब्रह्मा कुमारीज की सेट विंग और सिक्योरिटी सर्विस में एक फैकल्टी के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं. आपने भिन्न भिन्न अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर आप बहुत ही अच्छे लेक्चर्स प्रदान करती हैं, जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, सर्विस विथ स्माइल, हार्मनी इन रिलेशन, एम्पावर, सेल्फ एम्पावरमेंट. ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है जिन टॉपिक्स के ऊपर आप अपने वक्ता पेश करती हैं. आपने बहुत सारे स्थानों पर जैसे कि जो है एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, इंडियन ऑयल और कई स्थानों पर अपने जो है लेक्चर्स दिए हुए हैं. आपने देश विदेश में अनेक स्थानों पर जैसे कि यूएस में, यूके में, मिडल ईस्ट में भी जाकर के अपनी सेवाएं प्रदान की है. तो मैं अभी आमंत्रित करूंगी ब्रह्मा कुमारी विनीता बहन को नो मोर एंगर के लिए.
ओम शांति. सभी फ्रेश है, कोई एंग्री तो नहीं है, तो सेशन की जरूरत है. दो तीन दिन से तो आप सभी यहाँ आकर पीस की महसूसता करते होंगे, तो ऑटोमेटिकली एंगर जैसी इमोशंस काफी हद तक ऐसे वातावरण में आपने महसूस किया होगा कि काफी कम हुआ है, महसूस किया है, है ना? लेकिन जब हम एक डिफरेंट वर्ल्ड में जाते हैं यहां से बाहर और ऐसी परिस्थितियों में होते हैं, ऐसे लोगों के बीच में होते हैं, तो ये इमोशन जो है ना बहुत जल्दी सरफेस पे आता है। तो आज हम कुछ टिप्स लेंगे। वैसे आप दो दिन से जो सुन रहे होंगे, तीन दिन से, उससे ही आपको काफी अंडरस्टैंडिंग्स मिली होगी कि कैसे हम इस इमोशन को मैनेज करें। कुछ और बातें भी हम आज देखेंगे। एक यंग समुराई यानी योद्धा एक वृद्ध ज़ेन मॉन्क के पास गया इस उत्सुकता से कि मैं जानूं स्वर्ग और नरक क्या होता है। और उन्होंने उनको प्रश्न पूछा, गुरुजी प्लीज टेल मी व्हाट इज हेल एंड व्हाट इज हेवन। तो गुरु ने जैसे सर उठाकर उसको देखा और कहा कि तुमको मैं ज्ञान सुनाऊं, तुमको बताऊं, तुम अपने आप को सक्षम समझते हो मेरा ज्ञान समझने के लिए भी? मुझे तो लगता है तुम्हें अपनी तलवार की जंग उतारने की भी इतनी समझ नहीं है, तुम मेरा ज्ञान क्या समझ पाओगे? तो लगातार ऐसी अपमानजनक बातें गुरु कहता गया और ये सुनकर वो योद्धा तो बहुत हैरान हो गया। उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो गई कि गुरु मुझे क्या बोल रहे हैं इस प्रकार से। सुनते सुनते जैसे ना उसको गुस्सा आता गया अंदर से कि मेरी ऐसी इंसल्ट कर रहा है, मैं इतना बड़ा योद्धा हूं और ऐसे मेरी इंसल्ट। उसका गुस्सा जैसे ना जैसे पीक पर आ रहा था, बॉयल हो रहा था और उस गुस्से की शिखर पर ना उसके मन में थॉट चल रहा था, गुरु हो या ना हो, जो भी हो यह व्यक्ति है, ऐसे अपमानजनक बातें कर रहा है, इसके तो यू नो मैं अभी इसका खत्म कर दूंगा, जबान भी खत्म कर दूंगा, जीवन भी खत्म कर दूंगा। तो ऐसे सोच के वो ना तलवार उठाता है मारने के लिए। तो गुरुजी उसको देखकर कहता है कि यही नरक है, दिस इज हेल। तो उस गुस्से की पीक पर उसको समझ में आया कि गुरुजी इसको क्या कहना चाहते हैं। उसकी जो क्रोध ने उसको एक जीवित नरक, जीवित हेल का अनुभव कराया उस समय। फिर वो वापस तलवार रख देता है एंड गुरु के चरणों में गिर के देखता है उनकी तरफ और उस गुरु की ज्ञान भरे चेहरे को देखकर उसको बहुत शांति, बहुत प्रेम की महसूसता हुई। और तब गुरु ने उसको कहा कि यही स्वर्ग है, हेवन है। तो ये जो हमारी जीवन के रिएक्शंस होते हैं वही हमें इस जीवन में, चाहे वो हेवन है चाहे हेल है, उसकी अनुभूति कराते हैं, महसूस किया है। और उसमें सबसे कॉमन इमोशन है एंगर का इमोशन, क्रोध का इमोशन। एंगर यानी एक काइंड ऑफ सफरिंग। जब व्यक्ति गुस्से में होता है अंदर क्या फील होती है? सफर हो रहा है। इसलिए कहते हैं कि गुस्सा करने का कोई पनिशमेंट नहीं है। अगर आपने गुस्सा किया उसका कोई पनिशमेंट नहीं है, सजा नहीं है। लेकिन एंगर ही क्या है? सजा है। एंगर ही एक बहुत बड़ा पनिशमेंट है हमारे लाइफ में। एंगर को
एंगर में डी शब्द लगाओ तो क्या हो जाएगा? एंगर शब्द में डी लगाओ तो
डेंजर.
तो डी लगाओ तो एंगर मींस डेंजर. एक वाइफ बहुत नाराज थी, मूड ठीक नहीं था. तो हस्बैंड ने वो नाराज वाइफ से पूछा, क्या बात है, तुम कुछ बोल नहीं रही हो, बहुत शांत हो. तो वाइफ कहती है, आज मेरा गुस्सा साइलेंट मोड पे है. तो हस्बैंड कहता है बच्चों को, इसका मतलब आगे बहुत डेंजर है, बहुत खतरा है. जैसे कहते हैं तूफान के पहले शांति. तो इस प्रकार से जब व्यक्ति गुस्से में होता है, अग्नि के समान है ना. क्रोध को क्या कहते, पानी को क्या कहते, जल, लेकिन क्रोध को क्या कहते, अग्नि. अग्नि के समान है, अंदर ही अंदर हम जलते रहते हैं. और ये एक माइंड का शॉर्ट सर्किट है ना. एंगर इज लाइक शॉर्ट सर्किट ऑफ द माइंड. जब शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है, सब फंक्शंस बंद हो जाते हैं. इसी प्रकार कोई व्यक्ति गुस्से में है तो सब कुछ बंद हो जाता है, उसका दिल, दिमाग, लॉजिक, समझ, कुछ भी काम नहीं करती है. जब व्यक्ति गुस्से में होता है, देखा है ना क्या होता है, उसको कुछ सोचता ही नहीं, मुझे क्या बोलना है, क्या करना है, या कुछ बोल देता, कर देता, फिर बाद में वो पश्चाताप करता, अरे मैंने ऐसे क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों बोला. इसलिए कहते हैं कि गुस्से का नेटवर्क जो है ना, वो जो है ना बीएसएनएल का नेटवर्क होता है ना, उसका कुछ लाइन है, कभी भी कहीं भी फुल नेटवर्क है ना. तो गुस्से का नेटवर्क भी ऐसा है, कभी भी होगा, कहीं पर भी, एंड उस समय आपका फुल नेटवर्क मिलेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे गुस्सा करने में प्रॉब्लम है. आज आपको कहेंगे कि आप शांति में रहो तो आप क्या कहेंगे, डिफिकल्ट है, मेहनत करनी पड़ती है, इतना इजी नहीं है. कोई आपको कहेगा आप गुस्सा करो तो कोई कहेगा नहीं, मुझे गुस्सा आता ही नहीं, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है गुस्सा करने के लिए. कोई कहता है ऐसा? कोई नहीं है. आज कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको ये फील पता, वो फील होता है कि गुस्सा क्या है मुझे पता ही नहीं है. या तो हमने अनुभव किया है, हमने देखा है, हर एक एक्सपीरियंस्ड है. और यदि हम इस एंगर को लेकर चलते अपने लाइफ में, कई लोगों को हैबिट होती है ना, वो एक दिन, दो दिन, कुछ घंटे, एक घंटा, दो घंटा, एक दिन, दिनों दिन, हम कहेंगे 20 साल पहले तुमने मुझे ऐसे ऐसे कहा था, सब मुझे याद है. कितने साल पहले? 20 साल. अच्छा, वो एक दिन कहेगा, अच्छा मैंने ऐसा बोला था, मुझे याद भी नहीं, आई एम वेरी सॉरी. लेकिन हम कितने समय से वो लेकर अपने अंदर घूम रहे हैं. तो वो लेकर हम घूमते हैं. इसलिए कहते हैं कि कोई व्यक्ति सांप के काटने से नहीं मरता, लेकिन सांप के काटने के बाद जो जहर उसके बॉडी में फैलता है उससे मरता है. अच्छा, गुस्सा किया लेकिन उसको लेकर चलते हैं लाइफ में, वो जहर की तरह हमारी अंदर की खुशी, शांति, सुख, सब कुछ खत्म कर देता है. व्यक्ति को निराशा, हताशा, अकेलापन की महसूसता होती. और आप देखेंगे कि एंगर में व्यक्ति एक, जैसे हम सोचते कि मैं किसी के ऊपर गुस्सा करूं, जैसे हॉट कोल होता है, कोयला होता है, आप सोचते किसी और पर फेंको, लेकिन उसके पहले आप खुद जल जाते हो, तो ये सी हालत होती. महात्मा बुद्ध और उनके साथ जो भिक्षुक होते थे, उनके पास क्या चीजें थी? दो तीन कपड़े, रोब्स जिसको कहते हैं, और एक भिक्षा पत्र. पर फिर भी वो बहुत सुख में रहते हैं, खुशी में रहते थे, शांति में रहते हैं. आज हमारे पास इतनी चीजें हैं, फिर भी हमें शांति नहीं है. फुल कंफर्ट्स है, फिर भी सुख नहीं है, फिर भी खुशी नहीं है. तो उनके पास ऐसी कौन सी चीज थी, मूल्यवान चीज थी जो उनके जीवन को सुखमय बनाता था?
वो है फ्रीडम, स्वतंत्रता।
स्वतंत्रता यानी एक स्थूल स्वतंत्रता की बात नहीं है यहां पे, लेकिन मानसिक स्वतंत्रता, फ्रीडम फ्रॉम पॉइजन। कौन सा पॉइजन? एंगर, ईगो, जेलेसी, हेट्रेड, ऐसे इमोशन से वो फ्री थे। मन को जहां लगाना चाहे, जब जितना समय लगाना चाहे वो लगा सकते थे। वो आंतरिक फ्रीडम थी। इसीलिए हम सबके पास एक बहुत बड़ी शक्ति है, वो है हाउ नॉट टू रिएक्ट। रिस्पॉन्स देना अलग बात है, लेकिन कैसे मुझे रिएक्ट नहीं करना है। और ये कला यदि किसी ने सीख ली है तो वो जीवन में हर क्षेत्र में बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। यहां देखेंगे सम कोट्स हैं। जो आपको क्रोध दिलाता है वो उस आपको पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है। होल्डिंग ऑन टू एंगर इज ग्रैस्पिंग अ हॉट कोल विद द इंटेंट ऑफ थ्रोइंग इट एट समवन एल्स। यू आर द वन हु गेट्स बर्न्ड। अगर आपने जैसे बताया कोयले की तरह आप ही खुद जल जाओगे, आपने सोचा मैं दूसरे को हार्म करूं लेकिन खुद पहले ही जल जाओगे। एंगर इज अ विंड विच ब्लोज आउट द लैंप ऑफ द माइंड। मन की बत्ती बुझा देता है। डिस्कशन इज एन एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड आर्ग्यूमेंट इज एन एक्सचेंज ऑफ इग्नोरेंस। जब कोई व्यक्ति डिस्कस करते हैं, आपस में हम लोग डिस्कस करते हैं, वो क्या है? ज्ञान डिस्कस होता है। लेकिन आर्ग्यूमेंट होता है मन। जब कोई आर्ग्यूमेंट होते हुए देखा है आपने, कुछ समझ में आता है क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं समझ में आएगा। टॉपिक ही क्या है वही समझ में नहीं आएगा। जो बोल रहे हैं वो दोनों को भी समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं, सुनने वाले को भी समझ में नहीं आएगा। तो वो है इग्नोरेंस, है ना। इग्नोरेंस की स्टेज में हम होते हैं। यहां क्या दिखाया है, गुस्सा कैसे आता है डिफरेंट फॉर्म्स में, अलग अलग स्वरूप में उसको दिखाया है। जैसे रावण के 10 सिर है, तो वैसे एंगर के भी कई स्वरूप यहां पर बताए हुए हैं। इसको हम ट्रिगर्स भी कह सकते हैं। जब एंगर आता है वो अकेला नहीं आता है, वो अपने पूरे परिवार को साथ में लेकर आता है, उसकी जॉइंट फैमिली सिस्टम है। और उसको पता है किसको कहां भेजना है। इसलिए कहावत है एवरीवन बॉइल्स एट अ डिफरेंट टेम्परेचर। हर एक का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। जैसे आप देखेंगे गर्म पानी होता है, उसको आप बॉइल करते हैं तो फटाफट बॉइल हो जाएगा। थोड़ा नॉर्मल पानी होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, और एकदम ठंडा आइस कोल्ड पानी होगा तो बहुत टाइम लगेगा। इसी प्रकार कई लोग होते, थोड़ा सा आप उनको ट्रिगर करो, इमीडिएटली आग बबूला हो जाएंगे। जरा सा बोलने की देरी होती है आपको, कुछ ना कुछ ऐसे टॉन्ट मार दिया, उसको कहते ना पिन मार दिया, तो तुरंत उसको गुस्सा आ जाएगा। कई लोग होते हैं थोड़ा टाइम लगाते हैं ना, थोड़ा आप बोलेंगे सुनेंगे तो थोड़ा टाइम लगा। एंड कोई एकदम अंदर से ठंडे होते हैं, सब सुनेंगे शांति से, टाइम लगे। एंड कई लोग होते जिनको बहुत मुश्किल से कभी कभार वो इमोशन ट्रिगर होता है उनके अंदर। वो परसेंटेज में दुनिया में बहुत कम है अगर देखेंगे तो। तो आप इसमें से कौन से हैं, चलो देखते हैं। तो पहला है इरिटेशन। इरिटेट, पता नहीं इरिटेट होना, कब इरिटेट होते? अच्छा, आप लाइन में खड़े हैं, क्यू में खड़े हैं, सामने वाला जो है आपको एक ही चीज खरीदना है, सिर्फ आलू खरीदना है, टमाटर खरीदना है। मॉल में आपके आगे वाला व्यक्ति 50 चीजें उसका बिल बना रहा है, तो उस समय क्या होता है? इरिटेट होता है। क्यों? आपको इतना वेट करना पड़ता है, इतना टाइम जा रहा है, अभी तक हुआ नहीं इसका, है ना। वो इरिटेशन अंदर से आता है। कभी कोई आप कुछ बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बीच बीच में कोई आपको डिस्टर्ब करता जा रहा है। एक हमारी एक नेबर थी, तो मैं वो लेडी से कुछ
वो हम दोनों दरवाजे पर ऐसे आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, तो वो मुझे कुछ बोल रही थी एंड मैं भी इसे आपस में बात कर, तो उनका हस्बैंड घड़ी घड़ी अंदर से कुछ कुछ बोल रहा था, है ना, कुछ कुछ पूछ रहा था, शायद पूछता होगा कौन है, कौन आया है ना, इस प्रकार अंदर से। फिर वो अचानक ऐसे लेफ्ट में देखी हस्बैंड को एंड मराठी में बोला, काय काय है मी ये तेना, है ना, ऐसे सब करके कुछ कुछ ऐसे गुस्से में देखा। फिर मेरे साथ सामने वापस मेरे को स्माइल करके जो है ना वो वापस देख रहे एंड फिर बात कर रहे, एक सेकेंड में वहां इरिटेशन, एक सेकेंड में यहाँ पर स्माइलिंग। तो कभी ऐसा होता है कि हम लोग कोई कोई बातों पे ऐसे इरिटेट हो जाते हैं। दूसरा है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन माना जैसे आपका काम अटक जाता है, समझो आपने बहुत अच्छा काम कर लिया, बहुत किया, लेकिन लास्ट में वो हुआ नहीं, आपने बहुत मेहनत की उस पर, जैसे पानी फिर गया उस बात पर, क्योंकि लाइक जैसा आपने सोचा था वैसा हुआ नहीं, आपने जैसा प्लान किया, आपने कहीं जाने की कुछ ना उस प्रकार से सब प्लान किया लेकिन वो सब कुछ हुआ नहीं, तो आप क्या हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ये हो नहीं रहा, मेरा काम अटक गया, ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं, यू नो, तो अटक जाते हैं। तो कभी जो है ना लोग भी जो है ना अपने लाइफ में कैसे जीते मालूम है, एकदम फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेटेड पता है, जैसे जीवन में एकदम थके हुए से चलते हैं एंड ऐसे लगता है कि हमारा जीवन ही अटका हुआ है, जीवन कुछ कुछ बढ़ ही नहीं रहा, हम कुछ भी करने जाते हैं वहां हमको नुकसान होता है ना, उस प्रकार की फीलिंग में रहते हैं। तो एक बार मैं और एक बहन जो है ना, हम लोग जो हम लोग सांता क्रूज रहते हैं वहां स्टेशन पर हम लोग गए थे, कुछ सब्जी खरीदने गए थे, कुछ मार्केट में गए थे, तो हम लोग रिटर्न हो रहे थे, तो डिस्टेंस सेंटर के लिए बहुत कम था, तो बहुत ना कोई रिक्शा वाला रेडी नहीं होता था आने के लिए, कोई किसी को भी पूछो तो बोलते नहीं नहीं नहीं। फिर हमने क्या किया, जो रिक्शा वाला हम बैठ गए दोनों, फिर बिना पूछे जाना है। तो फिर जैसे हम लोग बैठ गए तो वो रिक्शा वाला हमको बोलता है, फंसा दिया, महात्माओं ने मुझे फंसा दिया। तो हमने पूछा, क्या फंसाया आपको, तो बोलते नहीं नहीं मेरे रिक्शा में ना पहले एक महात्मा लोग बैठे थे ना, उन लोग ने ना मुझे पैसे नहीं दिए, आप लोग तो पैसे देंगे ना, हमने कहा पैसे तो आपको पूरा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, तो अच्छा ठीक है। तो वो आगे चला, तो फिर वो बोलता है, फिर उसने अपनी कहानी शुरू की, अरे मैं ना जीवन में ना हमेशा मेरे साथ ऐसा ही धोखा ही हुआ है, मेरे घर वालों ने मुझे बहुत, परिवार वालों ने फंसाया है, फ्रेंड्स ने मुझे धोखा दिया है, जो भी मैं काम करने गया, बिजनेस करने गया, वहां भी उस सब लोगों ने मुझे फंसाया है, ऐसा ही रहा। तो उसकी सब कहानी सुनने के बाद फिर हमने सोचा हम भी अपना ज्ञान थोड़ा सुना लेते हैं, तो हमने कहा कि आप यहाँ आओ, मेडिटेशन सेंटर पर आओ, आप यहाँ मेडिटेशन करो, आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको मन की शांति मिलेगी, आपका आपको सुख मिलेगा, तो अच्छा अच्छा तो आपके मुख में घी शक्कर, आपका भी लाइफ अच्छा, आप इतनी अच्छी बातें हमें सुना रहे। ऐसे करते करते हम अपने सेंटर पर पहुंच गए। तो जब हम उतरे तो हमने उसको बोला कि ये देखो हमारा मेडिटेशन सेंटर है, पर आप यहाँ पर आना। तो उसने कहा ठीक है, फिर एक सेकेंड रुका, फिर हमको देखते हुए कहा कि आप मुझे शादी तो करने दोगे ना, आप मुझे फंसाओगे तो नहीं ना। तो बोला नहीं नहीं, या तो परिवार वाले आते हैं, तो बोला कि नहीं, क्योंकि मैं पहले ही बता देता हूँ मैं एक लड़की के प्यार में फंसा हुआ हूँ पहले। तो आप देखो जो व्यक्ति जीवन की हर घटना को कैसे देख रहा है कि मैं स्टक हूँ, मैं फंसा हुआ हूँ। तो हमने कहा नहीं कोई चिंता नहीं करना, आप यहाँ के मेडिटेशन सीखना, यहाँ परिवार वाले सब आते, आपको जो करना है अपने लाइफ में कीजिए। तो लाइफ में जब व्यक्ति ऐसे जीता है कि मेरा ऐसा ही होगा, उस थॉट से वो जी रहा है, मैं सब कुछ फंसा हुआ है मेरा, तो हर घटना को, जीवन की हर बात को वो वही एंगल से देख रहा है एंड फ्रस्ट्रेट होकर जीवन जी रहा है। तो हम भी पूछे हम कैसे जीवन जी रहे हैं, फ्रस्ट्रेट होकर जीवन जी रहे हैं या खुशी से जी रहे हैं। फिर है ग्रज। ग्रज यानी किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, आपको धोखा दिया, आपको क्रिटिसाइज किया, आपने किया काम, क्रेडिट वो लेकर गया, तो जब भी आप उसको मिलते हैं तो आपको अंदर से नहीं ग्रज की फीलिंग होती, इसने ना मेरे साथ ऐसा किया। फिर है रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट यानी अब कुछ हुआ है पहले, पास्ट में हुआ है, लेकिन आज भी वो बातें लेकर हम अपने जीवन में चल रहे हैं, हमें फील होता है कि ये लोग, यू नो, उनको लगता है कि मेरे साथ पार्शियलिटी होती है, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, मुझे क्रेडिट नहीं मिलता है, तो अंदर से वो सब लेकर अपने जीवन में चलना।
कंटेम्प्ट. कंटेम्प्ट यानी जैसे एक जजमेंटल होना. अच्छा ये प्रकार के लोग, ये लोग तो ऐसे ही होते हैं. अच्छा ये धर्म के लोग, ये तो ऐसे ही होते हैं. तो जब हमने एक जजमेंटल एटीट्यूड बनाकर जीवन में किसी के प्रति चलते हैं, वैसे ही हमारे मन में थॉट्स भी आते हैं. हेट, हेट यानी बहुत अंदर से नफरत किसी के प्रति ना, क्योंकि बार बार उस व्यक्ति के सामने जाते ही हमको याद आता है, इसने हमेशा ही मेरे साथ ऐसा किया, हमेशा मुझे धोखा दिया है या इस प्रकार से. तो अंदर तो आप कहेंगे कि वो हेट मना एंगर का बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन, कि मुझे ये व्यक्ति नफरत, मैं ये व्यक्ति से नफरत करता हूं, मुझे ये व्यक्ति पसंद ही नहीं है. तो वो अच्छी अच्छी चीज भी करेगा ना तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको उसके अंदर भी कुछ ना नेगेटिव दिखेगा, या आपको लगेगा ये ना ऐसे ही झूठ मूठ कर रहा है इस प्रकार से. फिर है रेज. रेज यानी जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है. आप देखते हैं कभी बहुत व्यक्ति को गुस्सा आता तो क्या करते हैं, चीजों को तोड़फोड़ करते हैं, फेंक देते हैं, मार देते हैं ना, इस प्रकार से सारी चीजें होती है. जब अभी आपका गुस्सा कोई आपके कंट्रोल में नहीं है, जब आपको फिर जैसे एक परिवार है, उन लोग कुछ शॉपिंग करने गए तो उनको घर के लिए फर्नीचर खरीदना था, तो उन्होंने जो है ना एक कांच का टेबल खरीदना था. तो वो डॉटर जो है वो कहती है उसको, उसकी मदर को, कि मम्मी सोच समझ के खरीदना, भैया ने लास्ट टाइम गुस्से में जो है ना वो क्या कहते हैं वो टेलीफोन कुछ तोड़ा था, अभी उसको गुस्सा आएगा तो कांच के टेबल पर ही निकालेगा. तो माना जहां हमारी चीजें, जैसे रोड्स में भी हम देखते हैं, रोड में कभी जैसे किसी ने कट कर दिया है ना, या इस प्रकार से, तो वहां खड़े होके भले टाई कोट में है ऊपर खड़े, वो गुस्सा कंट्रोल में नहीं, ऊपर बाहर आके कुछ कुछ गालियां देना शुरू करेंगे. एक हस्बैंड जो है कुछ काम कर रहा था, वाइफ बहुत गुस्से में थी, वाइफ कुछ कुछ सुना रही थी, एंड हस्बैंड नीचे देखकर वो ना हाँ 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 कर रहा था. फिर वाइफ को लगा बिल्कुल ये मेरी बात तो सुन ही नहीं रहा है, सीधा जाकर यू नो वो लैपटॉप के ऊपर ही सारा उसने पानी फेंक दिया. तो इस प्रकार जब मेरी जब चीजें कंट्रोल में नहीं है, या फिर पैसिव एंगर. पैसिव एंगर मना आप उस सिचुएशन में हो जहां आप गुस्सा निकाल ही नहीं सक रहे हो, मे बी आपके सीनियर्स हैं, बॉस हैं, जहां आप कुछ बोल नहीं सकते हो, तो आप क्या करते हो, अंदर ही अंदर सप्रेस करते हो, अंदर ही अंदर दबा के रखते हो गुस्सा. और जब ऐसा होता है ये तो बहुत डेंजरस हो जाता है. जापान में उन्होंने एक टेक्निक डिजाइन किया था, उनको पता चला कि ना एम्प्लॉयज की हेल्थ बिगड़ रही है, तो उन्होंने जो बेसमेंट है वहां पर सारे सीनियर्स बॉसेस के तस्वीरें लगा दी दीवार पर, और हर एम्प्लॉई जब पूरा दिन पूरा हो जाता था तो वो बेसमेंट में जाते थे, और जिस एम्प्लॉई से उनको कोई भी प्रॉब्लम होता था तो वो उसको जैसे कि एक बॉक्स करके आते थे, या वहां कीले रखे थे, कीला मारकर जाते थे, ताकि सारा क्या करे गुस्सा जो है वही ऑफिस पे ही ऑफिस में ही निकाल के जाए, घर लेकर वो नहीं जाए. नहीं तो कभी क्या होता है, ऑफिस का गुस्सा घर लेकर जाएंगे, घर का गुस्सा ऑफिस लेकर आएंगे, है ना. और फिर है सेल्फ एब्यूसिव एंगर, यानी कई लोग क्या करते, दूसरों के ऊपर नहीं निकालते, खुद के शरीर में निकालते हैं ना, एंड खुद कहते रहेंगे मैं तो कुछ काम का नहीं हूं, मेरे से तो कुछ ठीक से होता नहीं है ना, इस प्रकार की फीलिंग्स में चलते हैं. और फिर है वोलेटाइल एंगर. वोलेटाइल एंगर यानी अभी अभी आप देखेंगे कि सडनली कुछ भी नहीं है, आराम से बैठे हैं, सडनली गुस्सा आ गया, और नेक्स्ट मोमेंट व्यक्ति शांत भी हो गया, एकदम ठंडा, कुछ जैसे कि हुआ ही नहीं, आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या हुआ और क्या नहीं. तो इस प्रकार गुस्से की अलग अलग फॉर्म्स होती है. एक हम वीडियो देखेंगे यहाँ पे.
देखा कभी दिन की शुरुआत ऐसे होती है, दिन में भी ये बातें होती है, और इसको आजकल देखो कहते हैं डिजिटल इरिटेशन, डिजिटल एंगर। आप कुछ देख रहे हो, बीच बीच में क्या आती रहती है, एड्स आती रहती। कई लोग मेडिटेशन के लिए ना चालू कर देते यूट्यूब, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, इमिडिएटली एड आएगा कि फ्री ऑफर तो उसमें भी इरिटेशन हो जाता है ना। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में ना बहुत ये चीजें होती रहती हैं। अच्छा, कई लेकिन बिलीव्स अबाउट एंगर है। बिलीव्स क्या है? एंगर जरूरी है, एंगर कॉमन है, एंगर है ना एक शक्ति की निशानी है। दूसरे लोग मुझे गुस्सा दिलाते हैं। अच्छा, अगर एंगर नेचुरल होता तो ये इमोशन को तो हमें बहुत स्वीकार करना चाहिए था और बहुत खुश होना चाहिए था जब हम गुस्से में है तो। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना, कोई कहता है कि हाँ मुझे गुस्सा बहुत अच्छा लगता है। और जब हम गुस्सा होते हैं, एंग्री होते हैं, तो हमारे अंदर है ना ब्लड शुगर इंक्रीज हो जाता है, तो उस समय एक शक्ति की महसूसता होती है, पर वो फॉल्स स्ट्रेंथ है, क्योंकि वो गुस्से के एपिसोड के बाद क्या फील होता है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड, बहुत थकावट महसूस होती है। तो ये फॉल्स स्ट्रेंथ है, रियल स्ट्रेंथ नहीं है ये गुस्सा। और अगर नेसेसरी है एंड यदि हम समझते हैं कि ये एंगर हमारे लाइफ में बहुत जरूरी है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे सुन नहीं रहे हैं, तो मान नहीं रहे, तो पेरेंट्स को क्या करना पड़ता है, ऊपर ऊपर से झूठ मूठ का गुस्सा उनको दिखाना पड़ता है। लेकिन उसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए ताकि वो बच्चा जो है वो गलती ना करे, इस प्रकार से गलत काम ना करे। लेकिन एज इट इज एन इमोशन, अगर आप देखेंगे कि जब व्यक्ति एंगर में है और हम कहते हैं जरूरी है, तो उस व्यक्ति के हमको गले मिलना चाहिए, कहे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही गुस्सा करते रहो। लेकिन हम क्या कहते, अरे ये बहुत गुस्से वाला है, थोड़ा ऐसे संभल के रहना। दूसरों को भी हम ऐसे ही कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि अरे बहुत अच्छा है, हाथ मिलाएंगे उसे। कोई मिलाने जाएगा हाथ, कोई गुस्से में चलो मैं तुम्हारे हाथ मिलाता हूं ना, कोई नहीं जाएगा, दूर ही रहेगा। एंड कईयों को लगता है 81% पीपल ब्लेम अदर्स टू बी कॉज ऑफ देयर एंगर। मुझे गुस्सा क्यों आया, फलाने की वजह से। मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ को ब्लेम करती है, मेरे सारे प्रॉब्लम्स गुस्सा उसके वजह, डॉटर इन लॉ कहती है मदर इन लॉ की वजह से। पेरेंट्स बच्चों को ब्लेम करते हैं, सुनते नहीं है, बच्चे कहते पेरेंट्स समझते नहीं है हमको। मैनेजमेंट एम्प्लॉयज को ब्लेम करते हैं, एम्प्लॉयज मैनेजमेंट को ब्लेम करती है। तो आज हम मोस्टली औरों को कारण ठहराते हैं, पर क्या रियली दूसरा व्यक्ति कारण है हमारे गुस्से का? एक व्यक्ति मेडिटेशन करने के लिए सोचा कि मैं एक शांत जगह पे जाता हूं, तो वो एक सुंदर झील के पास, झील में बोट में गया एंड एक शांत स्थान देखकर वो बोट में बैठा था, मेडिटेशन कर रहा था। अचानक जो है जोर से एक ना आवाज आई एंड की बोट को हिला दी, उसकी मेडिटेशन को भी डिस्टर्ब कर दिया। तो उसको अंदर ही अंदर इतना गुस्सा आ रहा था कि किसने मेरा मेडिटेशन डिस्टर्ब किया, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, मैं ध्यान में बैठा हूं एंड इसने मेरा योग डिस्टर्ब किया। इस प्रकार के सारे थॉट्स आकर एंड वो कुछ बोलने ही वाला था, आंखें वो खोलकर जैसे ही बोलने वाला था, तो आंखें खोलते ही उसने देखा कि दूसरी एक बोट आकर जैसे ठोकर मार के वहां खड़ी है और उस बोट में कोई नहीं है। अर्थात वो बोट ऐसे ही जैसे झील में ऐसे आते आते उसको ठोकर लग गई। तब उसको रियलाइजेशन हुआ कि एंगर कहां है, कहां है एंगर, दूसरों की वजह से या फिर हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर ही उसका थोड़ा सा है पोर्शन, उसने सिर्फ ट्रिगर किया। बाकी सारे लोग क्या होते हैं, ट्रिगर्स होते हैं, लेकिन वो है कहां पर, उसने हमारे दिल में हमारे मन में स्थान लिया है। देखिए, जब हम नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं, थोड़ा आप सोचिए, कई बार हम नाराज इसलिए होते हैं कि सामने वाले का नेचर मुझे नहीं पसंद है,
सामने वाले का भोजन करने का स्टाइल मुझे पसंद नहीं है, ड्रेसिंग स्टाइल पसंद नहीं है, हमारे फैमिली में ही हम बोलते रहते हैं ये नहीं है, इरिटेट होते रहते हैं। और दूसरा, कई बार हमको गुस्सा इसीलिए आता है कि सामने वाले ने मेरी इंसल्ट की, मुझे क्रिटिसाइज किया, सबके बीच में ऐसा कह दिया। पर जो लोग ऐसे होते हैं, समझो कोई जानबूझकर भी आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है, एंड अगर आप ट्रिगर हो रहे हो, इसका मतलब तो आपने उसके लिए सब कुछ इजी कर दिया, वो तो और ही खुश हो रहा है कि आप नाराज हो रहे हो। एंड वो नाराजगी कहीं ना कहीं तो निकालेंगे, किसके ऊपर निकालते हैं? घर वालों के ऊपर। एंड घर वाले वो होते हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा चाहते हैं, आपके प्रति उनकी बहुत शुभ भावना होती है, एंड वो सारी नाराजगी, डांट, ये सब अपने परिवार वालों के ऊपर ही निकालते हैं। एंड जो व्यक्ति ने आपको ट्रिगर किया, समझो जानबूझ के ट्रिगर किया, जानबूझ के आपको, एंड उन लोग, कईयों की हैबिट भी होती है ऐसे किसी को ट्रिगर करने की, तो और ही आप उसको बढ़ावा दे रहे हो, और ही आप उसके लिए इजी कर रहे हो। कभी देखा छोटे बच्चे खेलते होंगे, जैसे एक बच्चा, उनको पता होता है कि ये बच्चा ना बहुत जल्दी रोता है, बहुत जल्दी डिस्टर्ब होता है, तो सारे बच्चे मिलकर क्या करते, वही बच्चे को बार बार डिस्टर्ब करेंगे, उस बच्चे को चिढ़ाएंगे। तो ये आपके ऊपर है, आपके हाथ में है कि आपको कितना ट्रिगर होना है, कितना आप समझदार बनकर, एंगर मना बेसमझी, इग्नोरेंस मना बेसमझ होकर कर रहे हैं। जब हम नॉलेज समझते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, तब आपको समझ में आएगा कि ये जरूरी नहीं है। और ये साइकिल ऑफ एंगर चलता है, एक है ट्रिगरिंग इवेंट, आप सोचिए मेरा ट्रिगरिंग इवेंट क्या है, मुझे कौन सी बातें बहुत जल्दी डिस्टर्ब करती है, आप एक लिस्ट निकालिए, आपको पता चलेगा हर बात पे हम एंग्री नहीं होते हैं, लेकिन कोई कोई चीज होगी जिससे हम बहुत जल्दी नाराज होते हैं। फिर उसके बाद हमारे नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, उसके बाद नेगेटिव इमोशंस आना शुरू होता है, एंड फिर शरीर में भी उसकी सेंसेशंस होती है, फास्ट हार्ट बीट, टाइटनेस, शॉर्ट ब्रेथ, एंड फिर वो हमारे बिहेवियरल लेवल तक आता है। तो ये साइकिल तो बहुत फ्यू सेकेंड्स में खत्म हो जाता है, ये पूरा साइकिल। और डैमेज इज कॉस्ड बाय एंगर। दो लोग हैं, एक है गुस्सा करने वाला, एक है जिसके ऊपर जो गुस्सा सुनने वाला। अब जो गुस्सा करने वाला होता है वो तो कर रहा है, लेकिन जो गुस्सा सह रहा है, मान लीजिए मिस्टर बी जो गुस्सा सह रहा है, उसके पास नो पहले दिन वो डिस्टर्ब होता है, दूसरे दिन भी उसके थॉट्स चलते हैं, चार पांच एपिसोड के बाद वो क्या सोचने लगता है, ये तो फालतू बोलता रहता है, इसका तो मैं सुनू ही नहीं तो अच्छा है, बोलने दो, बड़बड़ाने दो, मुझे क्या है, उसको करने दो, है ना। वो अपना एक प्रोटेक्टिव कवरिंग अपने ऊपर लगा देता है। तो जिसके ऊपर गुस्सा आप कर रहे हो, उसके पास तो क्या है, चॉइस है, गुस्सा करना है, सुनना है या नहीं सुनना है, सुना अनसुना कर दो, जाने दो, उसको बोलने दो, मैं तो सुना अनसुना कर दूंगा। लेकिन जो गुस्सा कर रहा है, क्या उसके पास चॉइस है? मान लीजिए हम 10 लोगों के ऊपर नाराज होते हैं, तो 10 बार एंगर की इमोशन कौन एक्सपीरियंस कर रहे हैं? हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? हमारा हो रहा है। सामने वाले के ऊपर, वो सामने वाले 10 अलग लोग हैं, वो लोग तो सुनते हैं, वो लोग फिर इग्नोर भी करना शुरू करते हैं, तो बेचारा कौन है? गुस्सा करने वाला है जो सुन रहा है वो गुस्सा, कौन बेचारा है? गुस्सा करने वाला, क्योंकि उसका ज्यादा नुकसान हो रहा है। जिसके ऊपर वो गुस्सा हो रहा है वो तो फ्री हो गया, है ना। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, डॉक्टर इमोटो, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, पानी के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और उस पानी पर बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोले, पॉजिटिव वर्ड्स बोले, लव, थैंक यू, वेरी वेरी नाइस, ऐसे अच्छे अच्छे बातें बोली। तो वो पानी जो है ना वो क्रिस्टल्स, बहुत सुंदर क्रिस्टल्स का स्वरूप ले लेती है, और नेगेटिव वर्ड्स बोले तो वो सारा पानी का जो शेप है, स्ट्रक्चर है, सब कुछ बिगड़ गया था। तो इस प्रकार उन्होंने म्यूजिक के द्वारा, उसने अच्छे वर्ड्स के द्वारा बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स की। तो इस चित्र में भी आप देखेंगे थैंक यू है, विजडम है, ट्रूथ है, इटर्नल है, उसके पिक्चर्स कितने अच्छे हैं, सुंदर हैं, एंजल, आई लव यू, पीस। एंड फिर जब गलत बातें बोलते थे, यू फूल, या फिर उसको मूर्ख बोलते थे, या कुछ यू नो खराब बातें बोलते थे, प्रेयर करते थे, तो बहुत अच्छा क्रिस्टल्स फॉर्मेशन होता था। तो जड़ चीजें, पानी जो है ना वो हमारी वाइब्रेशंस को अब्सॉर्ब करती है। इसलिए यहां पर भी हम कहते हैं जब आप पानी पियो ना, तो जो सारे दिन में तो आप बहुत बार पानी पीते हो, तो जब आप पानी पीते हो 5 सेकेंड जो है, कुछ भी एक अच्छी बात, समझो आप कहते हैं कि मैं हेल्दी हूं, या आई एम सक्सेसफुल, या आई एम पीसफुल, ये बार बार वो पानी को बोलकर फिर आप वो पानी पियो, क्योंकि वही वाइब्रेशंस आपके बॉडी में जाएंगे, क्योंकि बॉडी में मोर देन 71% क्या है, वाटर है। तो जो आप बोलते हो वही चीजें, आप अपने लिए जो बोलते हो, अपने लिए जो सोचते हो, वही चीजें आपकी बॉडी अब्सॉर्ब करती रहती है। तो अगर आप नेगेटिव वर्ड्स बोलते तो बॉडी में भी क्या जाएगा, वही वर्ड्स जाएगा। एक बच्चे ने अपने फादर से कहा मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो फादर ने कहा ठीक है मैं तुम्हें एक टेक्निक बताऊंगा, तुम जितनी बार गुस्सा करते हो उतनी बार जो दीवार है उस पर जाके कील लगा दो। तो बच्चे ने देखा कि मैं जब दिन पूरा होता था देखा कि दीवार में तो इतनी कील लगी हुई है, तो उसको समझ में आया कि मैं इतना गुस्सा करता हूं। तो धीरे धीरे उसने क्या किया, मेहनत करके अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल में लाया एंड बहुत थोड़ी सी कील बची थी। तो फिर उसने कहा कि एक दिन फादर को आके कहा कि डैडी अभी जो है ना मेरा गुस्सा बहुत कम हो गया है। तो फादर ने उसको कहा अच्छा एक काम करो, तुम वो कील जो लगी हुई है ना जो दीवार पर, वो वापस निकाल दो। तो वो निकालने गया तो बहुत मेहनत लग रही थी, और जब निकालने के बाद भी क्या होता था, उसमें वो निशान लग जाते थे। तो कहा कि देखो जब हम गुस्सा करते हैं तो उस समय तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी बहुत ज्यादा डैमेज होती है, जो कभी कभी इररिपेरेबल भी होती है। व्यक्ति कहते हैं ना कि वो शरीर के घाव तो फिर भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन किसी ने ऐसे अपशब्द बोल दिया आपको, किसी ने कुछ कह दिया या आपने कह दिया, तो वो जिंदगी भर याद रखता है कि देखो उसने ना मुझे ऐसे ऐसे शब्द कहा है ना, इतने ऐसे वर्ड्स कहे हैं। तो इसलिए उसके डैमेजेस भी बहुत हैं। एंगर को कहते हैं आइसबर्ग की तरह। आइसबर्ग पता है, आइसबर्ग क्या, उसकी क्या विशेषता होती है, आइसबर्ग की विशेषता क्या होती है, कि वो समुन्दर में होता है और सिर्फ 10% क्या दिखता है, वो बाहर दिखता है, बाकी 90% हिडन होता है, आपको दिखेगा ही नहीं। तो जब आप किसी व्यक्ति को देखते हो आपको उसका 10% दिखता है, वो 10% है गुस्सा, लेकिन 90% अंदर है, वो नहीं दिख रहा है। माना क्या चीज है जो एंगर को ट्रिगर कर रही है, वो समझ में नहीं आएगा। इसमें बहुत सारी इमोशंस हैं, ईगो है, एक्सपेक्टेशन है, हर्ट है, फियर है, अंदर में एक दर्द है, फ्रस्ट्रेशन है, रिजेक्शन, किसी ने हमको रिजेक्ट किया है, रिलेशंस में रिजेक्ट हुए हैं, ओवरवेल्म, डिसअपॉइंटमेंट, हमेशा हम नाकामयाब हुए हैं, हमको कोई चीज का डर है, कोई चिंता है, तो ये सब चीजें अंदर होती है जो हमको पता नहीं चलता है। तो आज अभी टाइम नहीं है जो हम डिटेल में ये सब डिस्कस कर सकें। तो एक आध दो चीजें, जैसे ईगो है, कई बार हमारा एंगर ईगो के वजह से भी होता है कि मैं ही इंपॉर्टेंट हूं, आई मी एंड माइन, मैं और मेरा, आई मी एंड माइन को ठेस पहुंची तो मुझे गुस्सा आएगा। दो लोग एक छोटी सी गली में, दोनों की गाड़ी आमने सामने आई, दोनों उतरने को रेडी नहीं है, दोनों वेट कर रहे थे कि वो पीछे जाए, ये व्यक्ति सोच रहा था उसको पीछे जाने दो, वो दूसरा गाड़ी में जो बैठा था वो सोच रहा है इसको पीछे जाने दो। फिर थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति न्यूज़पेपर उठाकर पढ़ने लगा, तो सामने वाला जो गाड़ी है वो ड्राइवर उठा, वो व्यक्ति गाड़ी चलाने वाला उठा और इसके पास आया। तो इसने सोचा कि चलो ये तो कॉम्प्रोमाइज करने आ रहा है, अच्छी बात है। तो वो आकर उसको कहता है कि भाई साहब आपका पेपर पढ़ के पूरा हो जाएगा ना तो मुझे दे देना। तो इस हद तक हमारा जीवन में ईगो चलता है, एंड वो ईगो जैसे लगता है कि मैं बॉस हूं, मैं सीनियर हूं, मेरी बात माननी चाहिए। अच्छा, जो सबॉर्डिनेट है उसको लगता है कि मैंने अच्छा काम किया तो मेरी बात माननी, मेरी बात को मान मिलना चाहिए, मुझे अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। अच्छा, मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा तो मैं काम ही नहीं करूंगा। तो हर चीज में हमारा ईगो जो है ना वो सामने बहुत आता है। दूसरा है एक्सपेक्टेशन। मैंने एक्सपेक्ट किया कि तुम ऐसे होगे, मैरिज में भी होता है, हम सोचते हैं कि ये ना ऐसा होना चाहिए, ये व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, एंड फिर आफ्टर मैरिज कहते हैं मैंने तो कुछ और ही सोचा था, मैंने तो एक्सपेक्ट किया कि आप ऐसे हो जाएंगे, आप तो कुछ और ही निकले। क्योंकि हमने एक इमेज बना के रखा है। एक्सपेक्टेशंस कैसे काम करती है? एक गर्ल है जो मैरिज करना नहीं चाहती है, उसकी मदर बोलती है क्यों नहीं करना चाहते है? तो बोलते मुझे नहीं करना है। तो मदर कहती है, तो वो लड़की मदर को कहती है मुझे एक रीजन बताओ क्यों मैं मैरिज करूं। तो मदर कहती है कि जब अगर आप मैरिज करोगे तो आपको बहुत अच्छा हस्बैंड मिलेगा जो आपका बहुत ध्यान रखेगा, आपको बहुत मदद करेगा, आपका केयर करेगा। तो वो रेडी हो जाती है। दूसरे लड़का है वो भी रेडी नहीं है, वो भी मना करता है। तो वो भी अपने मदर को यही क्वेश्चन पूछता है। तो मदर उसको कहती है कि अगर तुम मैरिज करोगे तो तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा, तुम्हारी वाइफ तुम्हारी केयर करेगी, तुम्हारा ध्यान रखेगी, खाना बनाएगी। अच्छा, फिर दोनों शादी करते हैं। अब इस एक्सपेक्टेशंस की, वो मेरा ध्यान रखेगा और ये एक्सपेक्ट कर रही है वो मेरा ध्यान रखेगा, एंड दोनों ही क्या कर रहे हैं, दोनों ही एक्सपेक्टेशंस में जी रहे हैं। और उनकी जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तो क्या होगा? एंगर तो आएगा ही। तो ऐसे एक्सपेक्टेशंस में हम जीते हैं। एक्चुअली हम अपने आप से ही एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, सुप्रीम से एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। कभी हमको, हम बहुत लो सेल्फ एस्टीम में होते हैं और अपने लिए बहुत नेगेटिव सोचते हैं तो वो भी एक एंगर का कारण बन जाता है। मैं तो अच्छी नहीं हूं, मैं कुछ कर नहीं सकती हूं, मैं तो इतनी होशियार नहीं हूं। तो ऐसे जब नेगेटिव थॉट्स चलते हैं तभी हमारे अंदर बहुत जल्दी एंगर ट्रिगर होता है। तो चलिए हम कुछ स्टेप्स देखते हैं। पहली बात है अवेयरनेस। अवेयरनेस, एक जर्नल रखिए, एक नोट डाउन कीजिए कि कौन सी बातें मुझे एंगर ट्रिगर कर रही है। आप देखेंगे छोटे बच्चों को भी, 2 साल के, 3 साल के बच्चों को कितना जल्दी गुस्सा आता है, कभी देखा है? 3 साल के बच्चे को भी गुस्सा आता है, उसका टॉफी ले लो, उसका खिलौना ले लो, ऐसे गुस्से में आपको देखेगा वो। कहां से सीखा उसने? वो पैटर्न कितना स्ट्रांग है। तो हम चेक करें कि मेरे गुस्से का पैटर्न कैसे आ रहा है, कौन मुझे गुस्सा दिला रहा है। दूसरा है, कई आप छोटी छोटी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। जैसे अभी स्टार्टिंग में सिस्टर ने बताया, उनको कहते हैं काउंट करो, गुस्सा आए तो क्या करो, काउंटिंग करो। ब्रीदिंग टेक्निक्स होती है। एक ऑफिस में मीटिंग में एक व्यक्ति बहुत पानी पी रहा था कंटिन्यूसली, तो दूसरे ने उसको पूछा बाद में कि तुम कुछ थेरेपी कर रहे हो, कितना पानी पी रहे हो, वाटर थेरेपी कर रहे हो, कुछ कर रहे हो? तो कहता है मैं कोई थेरेपी कर नहीं रहा हूं, लेकिन क्या होता है जब मुझे गुस्सा आता है ना मैं पानी पीता रहता हूं ताकि मैं अपने आप को शांत कर सकूं और उस समय मुझे सोचने का टाइम मिले कि मुझे क्या बोलना है ना, वो टाइम में जब वो ब्रेक मिल जाता है। जब गुस्सा आता है तब बहुत सारी थॉट्स फुल स्पीड में, देखा है नेगेटिव थॉट्स, उसकी स्पीड भी 120-130 ना, जैसे गाड़ी की स्पीड है वैसे चलती है। तो क्या करो, उसको आप लिखना शुरू करो, जो भी मन में आ रहा है ना, जिसके भी प्रति आपको आ रहा है वो क्या करो, वो लिखो। वो लिखने से क्या होगा, आपका रिलीज होता जाएगा। एक व्यक्ति का बॉस बहुत गुस्से वाला था, तो उसके फ्रेंड ने पूछा कि तुम्हारा बॉस इतना डांटता है तो तुमको गुस्सा नहीं आता उसके ऊपर? तो वो कहते हैं नहीं, नहीं करता हूं गुस्सा में, बोलता अच्छा तो मुझे भी वो टेक्निक सिखाओ कि कौन सा ऐसा टेक्निक है जिससे तुम अपना गुस्सा मैनेज करते हो। तो वो क्या कहते हैं, जब मेरा बॉस गुस्सा करता होता है ना तो मैं जो है ना मन ही मन उसका कार्टून बनाता रहता हूं, एंड मैं वो जैसे जैसे गुस्सा कर रहा मैं वही कार्टून ड्रॉ करता रहता हूं। तो आपके पास भी कोई भी ऐसी आप टेक्निक ढूंढिए कि जब सामने वाला गुस्सा कर रहा है अपने अंदर क्या कीजिए, कोई ना कोई उसकी क्या करो कार्टून भी बना सकते हैं। हम परमात्मा को सिस्टर कह रही है वो सोचती है कि सामने वाले को ज्ञान नहीं है कि भगवान उसको थोड़ा ज्ञान दे। अच्छा ये एंगर को है ना हम दे सकते हैं, जैसे एंगर बहुत अच्छी इमोशन है ना, अगर होती तो हम अपने पास रखते, लेकिन कोई अपने पास रखना नहीं चाहता। हम क्या सोचते कि हम रिलीज करें, तो कोई ना कोई व्यक्ति पर हम रिलीज करते हैं। तो उससे अच्छा परमात्मा हमको क्या कहते हैं ना, तुम सारा एंगर जो है ना मुझे दे दो। तो जब आप बैठते हो मेडिटेशन में, आप परमात्मा को कहो कि ये सारा मेरा जो अंदर में ये नेगेटिव इमोशन है ना, मैं आपको दे रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट। आप किसी को गिफ्ट देते हो तो नेक्स्ट डे जाकर वापस लेते हो? नहीं। तो आप परमात्मा के आगे कहो कि मैं ये सारा गिफ्ट आपको दे रही हूं, ये सारे इमोशन आपको दे रही हूं, अपने पास रखना मुझे नहीं देना। नेक्स्ट टाइम आपको जब एंगर आएगा तब आपको परमात्मा याद दिलाएगा तुम आपने तो मेरे को दे दिया है, फिर आप कैसे ले सकते हो। एक और टेक्निक है उसको हम कहते हैं पॉज टेक्निक, पॉज करना। तो कई बार लाइफ में आप देखेंगे पॉज बहुत जरूरी है। स्कूल में भी ना, जैसे पढ़ाई होती है फिर क्या होता है ब्रेक होता है ना, वेकेशन ब्रेक होता है, इवन सैटरडे मंडे से लेकर सैटरडे फिर संडे ब्रेक होता है, लोग कैफेज में जाते हैं, दो मिनट में भी कॉफी तो पी सकते हैं लेकिन आराम से बैठते हैं शांति से बैठकर। तो ये ब्रेक में हमको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है, चेक करना है, चेंज करना है, नहीं तो क्या होगा वही हमारी पैटर्न्स रिपीट होती रहेगी। कल भी हम गुस्सा कर रहे थे, आज भी हम गुस्सा कर रहे हैं, कल भी गुस्सा करेंगे, शरीर छोड़ेंगे, आत्मा वही गुस्से का संस्कार लेकर दोबारा जन्म लेगी, 2 साल के बच्चे 3 साल के बच्चे के रूप में गुस्सा करती रहेगी, है ना। तो कहीं पर भी ब्रेक लग ही नहीं रहा है। आज अगर हम ब्रेक नहीं लगा रहे, माना यही संस्कार तो मैं लेकर आई हूं, हम कहते ये तो मेरा हैबिट है, संस्कार है, लेकिन ये संस्कार हमने खुद डेवलप किया है, हमने ही क्रिएट किया है। कैसे क्रिएट किया है, बार बार करके, बार बार रिपीट किया है हमने अपने लाइफ में। तो इफ वी आर द क्रिएटर ऑफ एनी हैबिट वी कैन इवन ब्रेक दैट हैबिट। तो हम उस गुस्से के हैबिट को हम ब्रेक कर सकते हैं, इसकी पावर हमारे हाथ में है। जब हमने ये समझा, कई ऑर्गेनाइजेशन से आप देखेंगे जेट एयरवेज है, किंग फिशर्स है, क्यों आज वो बंद हो गई, बिकॉज कहीं ना कहीं वो प्रोसेस चलती रही, वो ब्रेक में भी इवैल्यूएट नहीं किया। हम अपने लिए ब्रेक देते ही नहीं है, हम कुछ ना कुछ प्रोसेस चालू ही रहता है ब्रेक में भी। कई कंट्रीज में तो उनको जबरदस्ती उनको ऑफिस से ब्रेक लेना ही पड़ता है, क्यों, ताकि वही प्रोसेसेस नहीं चले। उस समय आप शांति से बैठकर आपको सोचने का समझने का समय मिले कि क्या मैं जो कर रहा हूं ठीक है, और अगर ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं चेंज करो, नहीं तो आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे, वही गलतियां आप करते रहोगे, वही आपके संस्कार हमारे बनते रहेंगे। और दूसरा है डिले रिस्पॉन्स, डिले करना। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, वहां वो जो साइंटिस्ट है उसने क्या किया कि रिसर्चर साइंटिस्ट था, कुछ बच्चों को एक रूम में रखा और उनके सामने चॉकलेट्स रखी और कहा कि अगर आप अभी खाएंगे तो 1 चॉकलेट मिलेगा, 15 मिनट के बाद खाएंगे तो 2 मिलेगा, आधे घंटे के बाद खाएंगे तो 3 मिलेगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट में देखा गया मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया, चॉकलेट तुरंत खा लिया। तो इसको कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। और उन्होंने पाया कि जो बच्चे कंट्रोल कर सकते थे अपने जो फीलिंग्स को या अपने इमोशंस को, वो आगे चलकर बहुत सक्सेसफुल रहे, और जो नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, इमीडिएटली ट्रिगर होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लाइफ में फेलियर्स भी होते गए। तो जब हम एंगर के रिस्पॉन्स को डिले करते हैं, एक बहुत बड़े जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपने अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने अपने एक एक्सपीरियंस में बताया कि उनकी मदर हमेशा उनको कहती थी कि जब भी तुमको गुस्सा आए तो कोई जवाब मत देना, उस समय कोई भी रिप्लाई मत देना, नेक्स्ट डे ही रिप्लाई देना। और उसने पाया कि जब मैं वो डिले करता हूं, उसी समय रिएक्ट नहीं करता हूं, तो नेक्स्ट डे जब मैं रिप्लाई देता हूं, थोड़ा सेंसिबल रिप्लाई होता है, थोड़ा शांति वाला रिप्लाई होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे बाद में पश्चाताप हो। तो हम इसको डिले कर सकते हैं, हम उसमें पॉज दे सकते हैं, या कोई टेक्निक डिजाइन कर सकते हैं जहां हम यूज कर सकते हैं। दूसरा है पॉजिटिव थिंकिंग एंड रीफ्रेमिंग। पॉजिटिव थिंकिंग में हम क्या करते हैं, जैसे कोई घटना हुई ना, एंगर की कोई घटना हुई, तो आप उसको क्या करो, वापस रिप्ले करो एंड देखो आपने क्या क्या किया था, एंड उसको मेडिटेशन में उसको चेंज करो, उसको चूज करो, अभी मुझे ने अगर ये होता है तो मुझे क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए। एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि उन्होंने ना एक बिल्ली के सामने उन्होंने एक रेड लाइट रखा, और वो रेड लाइट दिखाकर बिल्ली को शॉक दिया। तो एक दो तीन बार ये किया तो बिल्ली को समझ में आया, रेड लाइट दिखना माना मेरे को शॉक होगा, तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो बिल्ली को रेड लाइट दिखाते थे, शॉक नहीं देते थे, तो भी क्या होता था, उसको शॉक की फीलिंग आती थी। फिर उन्होंने क्या किया, बिल्ली के सामने दूध रखा, तो वो दूध पीने गई, तभी रेड लाइट वापस अचानक दिखा दिया, तो पहले वापस उसको शॉक हो गया, फिर धीरे धीरे वापस करते गए, फिर वो बिल्ली को समझ में आया कि इसमें कुछ शॉक नहीं है, ये तो मेरा ही तो क्रिएशन है, एंड फिर वो धीरे धीरे वो एंजॉय करने लगी, तो वो दूध पीना, एंड फिर उसका नॉर्मल हो गया। तब उन्होंने समझा कि आप जब रिलैक्स्ड स्टेट में होते हो, और उस रिलैक्स्ड स्टेट में आपने अपने मन को जो प्रोग्रामिंग दिया, उस द्वारा आप अपने जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग पहले का है उसको आप चेंज कर सकते हो। आप समझे, जैसे एक व्यक्ति माउंट आबू आया था, प्रोफेसर था, बहुत गुस्सा करता था, पर वो आया एंड सब लोग उससे डरते थे, जाते नहीं थे, कोई स्टूडेंट्स भी नहीं जाते थे, दूसरे लोग भी बात करने नहीं जाते थे। तो उसने कहा मैं माउंट आबू आया, सेशन अटेंड किया, लेकिन उसने इस इंटेंशन से नहीं किया कि मुझे गुस्से पर कंट्रोल करना, वो तो ऐसे ही आया ज्ञान सुनने के लिए। लेकिन हमारे ना ऑर्गेनाइजेशन में पहले पहले ना एक दो कमेंट्री होती थी शीलू बहन की ना, जैसे शांति के ऊपर, एंड अभी भी है वो मेडिटेशन कमेंट्रीज। तो वो क्या करता था, रोज एज अ प्रैक्टिस, रोज 5-10 मिनट मेडिटेशन भी नहीं, सिर्फ बैठकर सुनता था, 15-20 मिनट की वो कमेंट्री होती थी। उसने कहा रोज वो सिर्फ सुनता था, जैसे ना मैं शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, परमात्मा से मुझे शक्तियां मिल रही है। तो वो सुनते सुनते धीरे धीरे क्या हो गया, उसने कहा मेरा गुस्सा अपने आप शांत होने लगा, अपने आप जो है उसकी थॉट्स क्या होने लगे, पीसफुल होने लगे, सिर्फ वो प्रोग्रामिंग करने से। तो जब आप रिलैक्स स्टेट में होते हो, जो भी प्रोग्रामिंग आपको अपना ठीक करना है, मेडिटेशन की स्थिति में आप उसको ठीक कर सकते हो। इसलिए लोग रिग्रेशन करते हैं, वो रिग्रेशन में लोग दूसरे लोग उनका ठीक करते हैं, जो पास्ट की प्रोग्रामिंग है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, पास्ट की प्रोग्रामिंग को वो ठीक करते हैं। तो ये मेडिटेशन द्वारा भी टेक्निक है, जो आपके जो पैटर्न्स बने हुए हैं उसको आप ठीक कर सकते हो। फिर है मेंटेन इनर कंट्रोल। कोई आपको एक बार शिवानी बहन की किसी ने इंट्रोडक्शन दी, बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन दी, तो शिवानी बहन ने का बताया कि उसने मेरे बारे में नहीं बताया, वास्तव में उसने अपने बारे में बताया, अर्थात उसके थॉट्स कितने अच्छे हैं, उसके थॉट्स कितने सुंदर है। तो जब कोई नाराज होता है, गुस्सा कर रहा है, गाली दे रहा है, वो ये मत समझो कि आपको कुछ हुआ है, उस वर्ड्स में आपको डिस्टर्ब करने की ताकत नहीं है, लेकिन वास्तव में वो अपने आप के बारे में ही बता रहा है, वो आपके बारे में, क्योंकि वो क्लियरली बता रहा है कि मैं व्यक्ति कैसा हूं। एंड है ट्रस्ट एंड लेट गो। कई लोगों को लगता है सक्सेस माना रिजल्ट्स मेरे हाथ में होने चाहिए, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं तो इस प्रकार से होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं है तो कुछ ठीक नहीं है। तो सक्सेस माना ये नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट रहेगा, सब कुछ आपने जो प्लान किया वैसा होगा। कभी कभी आप देखेंगे डिले होना, वो भी आपके लिए बेनिफिट हो जाता है। बहुत सारे हम केसेस देखते हैं, अभी जो फ्लाइट डिले हुआ, फ्लाइट एयरप्लेन क्रैश हुआ, उसमें भी कोई ऐसे हैं जो ट्रैफिक जाम में फंसे हैं, लेट पहुंचे, फ्लाइट डिले हो गई, तो उनके लिए वो एक बेनिफिट हो गया। तो कभी कभी हमारे लाइफ में कोई बातें हमको हमारी हो नहीं रही, आप बहुत ट्राई कर रहे हो लेकिन हो नहीं रहा है, लेकिन उस समय पर होगा, इसलिए ट्रस्ट करो वो चीजें अपने समय पर होगी। आप वो प्रोसेस फॉलो करो, रिजल्ट्स के पीछे नहीं जाओ। आपको जो करना है मेहनत वो आप करो, रिजल्ट आपको अपने आप मिलेगी। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस पीस, लव एंड पेशेंस। जो भी कार्य करते हैं पीसफुली करने की कोशिश करें। भोजन खाना है, सारे दिन में कार्य करना है, थोड़ा पीसफुली होकर करना, वो पीस की प्रैक्टिस करें। ग्रैटिट्यूड, जब हम गुस्से में होते हैं हमारे थॉट्स बहुत नेगेटिव होते हैं, कि सब नेगेटिव बातों पर हम फोकस करते हैं, लेकिन अगर हम ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाएं, इवन हमने प्रैक्टिस किया थोड़े दिन में, आपके पास बुक्स नहीं है तो आपके जो फोन के नोट्स में भी आप लिखिए कि आज मैं किसके लिए ग्रेटफुल हूं। मुझे, मैं बहुत अच्छे स्थान पर आया हूं, मुझे अच्छी बातें सुनने के लिए मिल रही है ना। आप प्रकृति को देखिए, सवेरे उठते ही आपको कई बार ना बहुत अच्छी प्रकृति में आवाज आई ना, जैसे पंछियों की आवाज। भगवान की क्रिएशन कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है। जब वो चीजें देखेंगे तब आप ग्रेटफुल रहेंगे। तब आप रोज 5 बातें लिखिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, तो आपका जो गुस्से का जो इमोशन है ना वो शिफ्ट हो जाएगा टू ग्रेटफुलनेस। एक्सपीरियंस फॉरगिवनेस। हम कहेंगे कि सामने वाला व्यक्ति माफी के लायक ही नहीं है, उसने मेरे साथ किया ही ऐसा, गुस्सा तो आना ही है। पर आप अपने आप से पूछिए कि गुस्सा तो वो कर रहा है या मुझे, जैसे लास्ट पॉइंट है कि हमें अपने इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, और उसके लिए हम 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे। साइलेंस में अपने आप को इस बॉडी से डिटैच करते हुए मस्तक के मध्य पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में अनुभव करेंगे। मस्तक के ऊपर परमात्मा की दिव्य शक्ति की किरणें हैं। शांति की किरणें हैं। परमात्मा से हमें हीलिंग रेज प्राप्त हो रही है। और हमारे द्वारा ये शांति की हीलिंग रेज उस भाई तक भी पहुंच रही है जिसको तकलीफ हुई है। वो हील हो जाए। हमारी शुभ भावना की किरणें, मेडिटेशन की किरणें उसको फिर से स्वस्थ बना रही है, और यही हीलिंग रेज, पीसफुल रेज मेरे जीवन द्वारा शरीर द्वारा, मन द्वारा, चारों ओर विश्व में फैल रही है और मेरा मन, बुद्धि, जीवन बहुत पीसफुल हो रहा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। क्वेश्चन आते हुए स्वयं में नॉलेज के बादल पानी भरते रहे और अपने जीवन को भी एक सुंदर दिव्य गुणों का बगीचा बनाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।